रात की करीब 9 बजे होंगे जब अनंत बालकनी में खड़ा अपनी फ़ोन को स्क्रॉल कर रहा था। ठीक उसी वक्त उसका फ़ोन बज उठा। फिर से ही मामी का कॉल आता देखकर अनंत की नज़र सीधा राविया पर गई, जो वही बालकनी में सोफे पर बैठकर लैपटॉप में कोई सीरीज देख रही थी। कुछ सोचकर अनंत ने गहरी सांस ली और फिर कॉल पिकअप कर लिया। तो उधर से मामी ने थोड़ी डरी हुई आवाज़ में कहा, जीजू क्या राविया आपके पास है? अनंती मामी की ये बात सुनकर कन्फ्यूज़ हो गया, लेकिन उसने धीरे से कहा, हाँ कोई काम है तुम्हें या बात करनी है? इमामी ने जल्दी से कहा, नहीं मुझे उनसे बात नहीं करनी है, मुझे आपसे ही बात करनी है। क्या आप उनसे कुछ दूर आ सकते हैं? मैं नहीं चाहती कि उनको कुछ भी पता चले, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसकी बातों से अब अनंत परेशान हो गया था। वो धीमे कदमों से कमरे के अंदर आ गया और फिर बेड पर बैठते हुए बोला, हाँ बोलो क्या काम है? राविया ने रोते हुए कहा, जीजू आपने जो डॉक्टर भेजा था उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं? क्या आप एक बार के लिए मेरे पास आ सकते हैं? ये सुनते ही अनंत की आंखें फैल गईं। उसने अपने भरोसेमंद डॉक्टर को इमामी का इलाज करने के लिए भेजा था। वो डॉक्टर को बहुत अच्छे से जानता था, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता था। लेकिन फिर भी इमामी को ऐसे डरते हुए देखकर अनंत को बुरा लग रहा था। उसने जल्दी से कहा, तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा, और अगर उसने गलत किया है तो अभी उसे पुलिस के हवाले करूंगा, तुम रोना बंद करो। उधर इमामी जो नाटक कर रही थी अनंत की ये बात सुनकर मुस्कुरा उठी, लेकिन फिर उसने जल्दी से अपना एक्सप्रेशन बदलते हुए कहा, प्लीज़ राविया को कुछ मत बताना, वरना वो मम्मी पापा को देगी और फिर मेरे मम्मी पापा मुझे यहाँ से ले जाएंगे, लेकिन मुझे यहीं रहना है। आप समझ रहे हैं ना जीजू, मुझे बहुत डर लग रहा है। अनंत ने फिर से हाँ कहा और फिर कॉल कट कर दिया। अनंत ने फ़ोन काटते ही कुछ पल के लिए आंखें बंद कर ली। उसके दिमाग में एक साथ कई सवाल घूम रहे थे। डॉक्टर को वो सालों से जानता था, एकदम साफ सुथरा, प्रोफेशनल और भरोसेमंद। ऐसा आदमी किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती जैसी हरकत कैसे कर सकता है? लेकिन इमामी की आवाज़ में जो डर था वो नकली नहीं लग रहा था, या शायद लग रहा था, अनंत खुद नहीं समझ पा रहा था। वो धीरे से बालकनी की ओर मुड़ा। राविया अभी भी सोफे पर लेटी हुई थी, लैपटॉप की स्क्रीन पर सीरीज चल रही थी, लेकिन उसकी आंखें थकी हुई लग रही थीं। अनंत ने मन ही मन सोचा कि अगर राविया को पता चला कि इमामी का कॉल आया था तो वो तुरंत सवालों की बौछार शुरू कर देगी, और अगर इमामी सच बोल रही है तो मामला और उलझ जाएगा। अनंत ने गहरी सांस ली और कमरे में वापस आकर राविया के पास बैठ गया। क्या हुआ, इतनी देर से फ़ोन पर कौन था? राविया ने लैपटॉप से नज़रें हटाए बिना पूछा। अरे बस एक क्लाइंट था, प्रोजेक्ट की कुछ डिटेल्स क्लियर करनी थी, अनंत ने झूठ बोला था, आवाज़ को जितना हो सके नॉर्मल रखते हुए। थके होने के कारण राविया को उबासी आ रही थी। उसने फिर अनंत का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो बहुत लेट हो गई है, सो जाते हैं। अनंत ने प्यार से राविया के माथे पर किस करते हुए कहा, बीरी मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, मैं जल्दी लौट आऊँगा, अभी तुम सो जाओ। इतना बोलकर अनंत सोफे से उठ गया और फिर राविया को अपनी बाहों में उठाकर कमरे के अंदर लेकर आया। उसने जैसे ही राविया को बेड पर लेटाया, राविया ने एक हाथ से उसके शर्ट की कॉलर को पकड़ते हुए कहा, प्लीज़ इतनी रात को क्या काम है आपको, सुबह कर लेना, जब काम का वक्त होता है तब आपको रोमांस करना होता है, और इस वक्त आप मुझे ऐसे अकेले छोड़कर जा रहे हैं, दिस इज़ नॉट फेयर। उसके ऐसे कॉलर खींचने से अनंत उसके बिल्कुल करीब आ गया था। अगले ही पल राविया ने उसके होठों पर छोटा सा किस करते हुए कहा, प्लीज़ मत जाइए। अनंत ने अपने होठों पर घूमते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता बीवी तुम दिन ब दिन बहुत बेशरम होते जा रही हो, और शायद तुम्हें मेरी लत लग गई है, जो रात को अब तुम मेरे बिना रह ही नहीं पाती हो। इतना बोलकर अनंत तो उसके पास लेट गया और अगले ही पल उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। इसके बाद राविया की आँखें भी बंद हो गईं। थोड़ी देर किस करने के बाद अनंत को फिर से इमामी का ख्याल आया, वो किसी लड़की को ऐसे रोते हुए नहीं छोड़ सकता था। उसने राविया के माथे पर किस करते हुए कहा, अब सो जाओ बेबी, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। राविया ने भी अब ज्यादा जिद करना सही नहीं समझा, वरना शायद अनंत को लग सकता था कि राविया उस पर शक कर रही है, और राविया को अनंत पर कोई भी पाबंदी नहीं लगानी थी। अनंत ने राविया को कंबल उठाया और आखिरी बार उसका सर सहलाते हुए कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही राविया को भी नींद आ गई, क्योंकि वो सच में बहुत ज्यादा थकी हुई थी। थोड़ी देर बाद अनंत की गाड़ी उसे होटल के सामने जाकर रुक गई। अनंत ने गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद की और कहा, पहली बार अपनी बीवी से झूठ बोला है, बस कुछ गलत ना हो जाए। इतना बोलकर उसने दरवाज़ा खोला और फिर तेज़ कदमों से होटल के अंदर गया। वहां जाते ही उसने स्टाफ से इमामी के कमरे के बारे में पूछा। इसके बाद स्टाफ ने उसे कमरे के अंदर जाने के लिए कार्ड दे दिया, और तुरंत बाद अनंत लिफ्ट के जरिए सेकेंड फ्लोर पर पहुंचा, जहां इमामी का कमरा था। इमामी तो पहले से उसका इंतजार कर रही थी। उसने इस वक्त एक ब्लैक कलर की वन पीस पहनी थी जो उसकी थाई लेंथ की थी, और उसने बेशक वो खूबसूरत लग रही थी। अनंत ने जैसे ही दरवाजे की बेल बजाई, इमामी ने तुरंत दरवाजा खोल दिया, जैसे वो उसका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हो। अनंत ने जैसे ही इमामी के चेहरे को देखा, एक पल के लिए उसकी आंखें फैल गईं, क्योंकि इमामी का एक होठ पूरी तरह सूजा हुआ था। उसकी आंखों के नीचे भी काले घेरे पड़े हुए थे, उसके हाथ पर भी अजीब से निशान बने थे, जैसे सच में उसके साथ जबरदस्ती हुई हो। अनंत अंदर आया और फिर आहिस्ता से इमामी को कंधों से पकड़ते हुए बोला, आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मेरे न आने से तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। इमामी अगले ही पल रोते हुए अनंत के गले लगकर बोली, जीजू
थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं किसे बुलाऊं, क्या करूं। हो, राव्या डी का तो आपको पता ही है, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती है, शायद इसीलिए उन्होंने मुझे होटल में भेजा था। अनंत किसी के आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने इमामी का हाथ पकड़ा और फिर उसे बेड पर ले जाकर बैठे। उसके पास बैठकर बोला, नहीं तुम्हें गलतफहमी है, राव्या इतनी बुरी लड़की भी नहीं है। जरूर या तो तुम्हें कुछ किया होगा या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी जिसकी वजह से वो तुम्हें पसंद नहीं करती है। एक बार अगर तुम मुझे सब कुछ क्लियर कर दोगी तो वो कभी तुम पर गुस्सा नहीं करेगी और ना ही तुम्हें खुद से दूर भेजेगी। इनफैक्ट मुझे उसे तो फैमिली में रहना बहुत ज्यादा पसंद है, वरना जब वो यहाँ आई थी तब मैंने उसे पूछा था कि अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो हम अलग अलग जाकर रह सकते हैं, पर उसने साफ साफ मना कर दिया। इमामी ने अपने मन ही मन कहा, मैंने आपको यहाँ उसकी तारीफ करने के लिए नहीं बुलाया है, मेरा प्लान कुछ और है। इसके बाद इमामी ने अनंत के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, जीजू आज रात आप यहीं रुक सकते हैं, मुझे बेहद डर लग रहा है जैसे वो डॉक्टर फिर से आकर मेरे साथ कुछ कर लेगा। ये सुनते ही अनंत अनकंफर्टेबल हो गया, लेकिन फिर उसने जबरदस्ती स्माइल करते हुए कहा, ओके डोंट वरी, मैं यहीं रहूंगा तुम्हारे पास, तुम आराम से सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ बेड पर नहीं सो सकता क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, इसीलिए मैं सोफे पर सो जाऊंगा, तुम आराम से रेस्ट करो।
इमामी हल्के से मुस्कुराई और उसने अनंत का हाथ छोड़ दिया और आहिस्ता से बेड पर लेट गई। इसके बाद अनंत ने उसे कंबल ढकते हुए एक नज़र सोफे को देखा जो हद से ज़्यादा छोटा था। पता नहीं अनंत उस पर कैसे एडजस्ट होने वाला था।